फिर आयत 46 से 49 में मुश्रिकीन के लिए झंझोड़ने का असलूब है, बहुत ही शदीद किस्म का अंदाज है। कुल अराअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम अबसारकुम, तुम दिन रात इन कानों से और इन आंखों से गुनाह करते हो, कभी तुमने सोचा कि अल्लाह छीन ले? गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, वह ख़त्म आला कुलूबिकुम, जिस दिल में तुमने गैर चीज़ों की मोहब्बत डाली हुई है अल्लाह तुम्हारे दिल को पकड़ ले। अल्लाह से मिली हुई नेमतों को जब तुम अल्लाह ही की नाफरमानी में इस्तेमाल करते हो तो क्या अल्लाह ताला उसको ले नहीं सकता? और क्या तुम्हें रात के वक्त अल्लाह नहीं पकड़ सकता? क्या पता चला कि हमें हर वक्त अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए? फिर इसके बाद आयत नंबर 50 में नबी सल्लम को इजहारे आजजी का हुक्म है। क्या था कि अल्लाह के नबी से आके मुतालबे करते थे, ये दे दें वो दे दें, तो अल्लाह कहते हैं इनको बताओ, और फिर नबी खुद कह रहे हैं कुल ला अकूलु लकुम इंदी खजाइनुल्लाह, मैंने कब कहा है कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ, मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। देखिए इस आयत का नंबर नोट करके रख लें, अल्लाह के नबी अपने बारे में क्या कहते थे, और आज कुछ मुसलमान ना समझी में पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के नबी को सब बातों की खबर है, आज भी जो हो रहा है या कल भी हो रहा था, तो आयत क्या कह रही है, ला कुलू, मैं ऐसी बात नहीं कहता। फिर इसके बाद कुरान से हिदायत किसको मिलेगी, इसका जवाब आयत नंबर 51 में हमें दिखेगा। वंजिर बिहिल लजीन यखाफूना, उन लोगों को डराइए जो अल्लाह से डरते हैं। देखिए आप इस बात को अब सुन रहे हैं ना, और आप रोज सुनने को आ रहे हैं, किस बात की दलील है कि आपके दिल में अल्लाह का डर है? आप अल्लाह की पसंद के बनना चाहते हैं, जिन दिलों में अल्लाह का डर नहीं है या इग्नोरेंट है बेचारे, फिर वो उनको बात कहें भी तो उससे कोई फायदा नहीं होता। फिर आयत 52 से 53 में ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुकरा को अपनी कुर्बत से महरूम ना करें। मक्का के कुछ सरदार थे बड़े बड़े, जिनके दिलों में बड़ेपन का एहसास था, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम बड़े अमीर हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं। अब आपकी महफिल में बिलाल जैसे गरीब लोग भी आते थे, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे बकरियों को चराने वाले लोग भी आते थे, तो ये बड़े लोगों को स्टेटस का प्रॉब्लम होता था। कहते थे जहाँ सब होते हैं वहाँ हम नहीं आएंगे, आप इन सब को दूर करें, हमारा एक स्पेशल सेशन रखें और बड़ा अच्छा सा हो, और बड़े प्रोटोकॉल से हमें बिठाइए, और कौ चीज़ों और कॉफ़ी हो और कहवा हो और ये वो, और हम टांगों पर टांगे रख के बड़ी रौनक के साथ आपकी बात सुने, हम ऐसा लेक्चर आपका अटेंड कर लेंगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तो तलब थी, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता? उन्होंने कहा अल्लाह ताला अगर इन बड़े लोगों को इससे हिदायत मिलनी है तो मैं ये भी कर लेता हूँ। आज भी आप देखिए कि कुछ सिस्टर्स जिनको अल्लाह कुरान से मोहब्बत दे देता है, फिर वो अपनी दोस्तों के लिए बड़े खूबसूरत अरेंजमेंट्स करती हैं, पूरा पार्टी डेकोर है क्या कि चले हमारी दोस्तें आएँ, फिर वो जब वो आती हैं तो ख्वाहिश क्या होती है कि इनका दिल खुले, लेकिन कभी कभी ऐसी महफिलें सिर्फ अच्छे कपड़े और फैशन मेला बन के ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ने यहाँ ये बात कह दी, इनके नसीब में हिदायत है कि नहीं, लेकिन आप उन बेचारों को जो हिदायत की तलब में आपकी तरफ भाग भाग कर आते हैं अपने से दूर ना कीजिए। फिर क्या पता चला है 54-55 से कि फुकरा की इज्जत अफजाई करने का हुक्म दिया जा रहा है, यानी कोई अमीर खुद अमीर तो नहीं हुआ, इसी तरह कोई फकीर खुद फकीर तो नहीं हुआ, तो लिहाजा किसी को उसके पैसे की कमी की वजह से बेइज्जत नहीं करना, उसकी इज्जत को कम नहीं करना, बल्कि क्या कहा, फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। क्या पता चला जो बेचारे थोड़े से कमज़ोर लोग हैं उनको अल्लाह की रहमतों की उम्मीद दिला लीजिए, और उनको बताइए कि अगर आप इस दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला वहाँ आपको दूसरे लोगों से पहले जन्नत मिलेगा। हदीस कल भी हमने शायद पढ़ी थी कि 500 साल पहले चले जाएंगे फकरा। आपने कभी जहाज़ में सफ़र किया हो तो आप देखते हैं कि एयरपोर्ट पे कुछ लोग बिल्कुल सूटकेस के साथ, यानी एक बिल्कुल ब्रीफ केस के साथ आते हैं फर्स्ट क्लास में सफ़र करना है, कुछ के पास 4-5 लगेज होते हैं। अच्छा वो जो लगेज करवाने वाले अभी बेचारे बोर्डिंग पास लेने में, वजन कम करो ज़्यादा करो में उलझे में, और एक बंदा जाकर अपना टिकट लेकर बोर्डिंग पास लेके निकलता है, उस वक्त के लोगों को उस पर बड़ा रश आता है। क़यामत के दिन वो लोग जिनको दुनिया में कम लगेज मिला उन पे भी लोग फख्र करेंगे, रश करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये चले गए। फिर इसके बाद मुशरिकीन की तरफ से समझौते की पेशकश जो अल्लाह के नबी से हो रही थी उसका जिक्र 56 से 58 में, यानी सौदेबाजी पे आ गए थे। अगर आप पूरे मक्की दौर को 3 हिस्सों में बांटे ना, तो उसमें शुरू में तो कुछ ना उन्होंने इतना समझा, फिर बीच के दौर में बहुत जुल्म शुरू हो गए, तीसरा जो दौर था जिसमें उनको लगा कि ये नहीं छोड़ेंगे, यानी बिलाल अहद कहना नहीं छोड़ेंगे, और अल्लाह के नबी के बाकी साथी भी ऐसे थे, तो फिर उन्होंने गिव एंड टेक पे बात करनी शुरू की। अच्छा ये कर लो वो कर लो, जैसे कि सूरत काफिरून आप सभी जानते होंगे, कुल या युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदुन। तो ये आयत बिल्कुल उसी तरह की एक आयत है कि तुम जो मर्जी कह लो मैं अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। और हमारा भी यही मान होना चाहिए कि हम अल्लाह की बात ना छोड़ें, चाहे दुनिया की हर फायदे को हमारे सामने रख दिया जाए। फिर आयत 59 में अल्लाह ताला के इल्म की वसअत का बयान है, वइंदहु मफातिहुल गैब। अब देखिए पांच चीज़ें आती हैं जिनका तذکرہ यहाँ भी और आगे भी हम पढ़ेंगे सूरह लुक़मान में, कि गैब की चाबियाँ अल्लाह के पास हैं, मफातीहुल गैब गैब की चाबियाँ, खुशकी तरी में क्या है, और अल्लाह का इल्म कितना है, वमा तस्कु तुम्हें वरकत इल्ला यालमुहा। खिजा में ऑटम में जो पत्ता भी दरख्त से नीचे गिरता है अल्लाह को उसका भी पता है। आपने जिन मुल्कों में खिजां का मौसम देखा हो, होस का फेरिया देखा हो, आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ इतने पत्ते होते हैं। अल्लाह कहता है मुझे एक एक पत्ते का पता है, और ज़मीन में जो दाना खुश्क है या तर उसका पता है। तो इससे ज़रा आप अल्लाह ताला की वसअत को देखिए और मरूब होना। फिर आयत 60 से कुछ नींद की बातें हैं, आप में तो नहीं किसी को नींद आ रही है, वफात का इतलाक नींद पर होता है, यानी जो नींद है ना ये मौत की छोटी बहन है, ये कह सकते हैं आप। यानी जब हम सोते हैं ना तो हमारी रूह में से एक रूह ऊपर जाती है जो वापस आ जाती है, लेकिन मौत की सूरत में एक दूसरी रूह भी चली जाएगी जो कि वापस नहीं होगी। असल में सुबह शाम रात दिन अल्लाह ताला आपको मुझे कभी सुलाते हैं कभी जगाते हैं, तो ये मरने के बाद दोबारा जीने के सबूत है। कि जैसे रोज़ रात को बिस्तर पे लेटते हो और सुबह उठ जाते हो, तो नींद वफाते असगर है, छोटी मौत है ये, दिन भर फिर काम करते हैं रात को सोते हैं, इसी तरह एक दिन हमें वफाते कुबरा यानी बड़ी मौत आ जाएगी। और इसके बाद फिर आयत 61-62 में क्या बताया कि इंसान सर से पाँव तक अल्लाह के इख्तियार में है, वी कैंट गो बियॉन्ड अल्लाज पकड़, अल्लाह की पकड़ में है, वहुवल काखिरु फौका इबादिही। क्या पता चला, कभी भी अपने आप को अल्लाह की रेंज अल्लाह की पकड़ से दूर ना समझिए। फिर उसके बाद आयत नंबर 63 से 64 में हर मुसीबत और कर्ब से अल्लाह ताला ही बचाता है इंसान को, इस चीज़ का यकीन रखना चाहिए। और याद रखिए कि आप अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं ना, कम से कम आपको ये तो यकीन आ चुका होगा कि हमारे दुख तकलीफ़ें अल्लाह ही दूर करेगा, तो फिर जो दूर करेगा हमें उसी पे नज़रें लगानी है। फिर इसके बाद अल्लाह के अजाब की तीन सूरतों का तस्करा आयत 65 से 67 में है, यानी अल्लाह ताला बंदे को कभी कभी एक सूरत में पकड़ता है कभी दूसरी में पकड़ता है। मसलन आप देखिए कि लड़ाइयाँ झगड़े, कभी मातहतों का सरकश हो जाना, औलादों का बिगड़ जाना, इसी तरह से आप देखिए गिरो गिरो फिरके फिरके हो जाना। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी तो अल्लाह के नबी की जो दो दुआएं कबूल हो गई थी लेकिन एक दुआ कबूल नहीं हुई थी, आज हम उसका अमली इजहार देखते हैं, क्योंकि ये उम्मत की आजमाइश थी और वो क्या है कि गिरो गिरो हुई भी उम्मत है। फिर इसके बाद आगे आयत नंबर 68 से 69 में गैरत ईमानी का तकाजा, ये आयत हमारे मौजू से मुतल्लिक है। आज हम जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, समथानों के नाम पे लोग नाराज ना हो जाएं, हम ऐसी महफिलों में जाके बैठ जाते हैं जहाँ शैतानी काम हो रहे होते हैं। तो इन दो आयतों को जाकर जरा इसकी तफसीर सुन लीजिएगा, बस इन डेप्थ स्टडी की इन आयतों को खोलिए और सुनकर देखिए, तो हमारे ईमान की गैरत है कि हम ऐसी जगह पे मत बैठे जहाँ नाफरमानी हो रही है। फिर आयत 70 में दीन को खेल तमाशा बनाने वालों का इंजाम, खुशी के नाम पे अनिकाह हो मिन सुन्नती, लेकिन उस शादी में कितनी सुन्नतें टूटती हैं, ये दीन को खेल बनाना है तमाशा बनाना है। इसी तरह कहीं भी ख्वाहिश परस्ती के नाम पे दीन को बदलना, यानी ख्वाहिश परस्त लोग जो होते हैं ना वो दीन को अपनी ख्वाहिशात के ताबे बनाते हैं, जबकि तौहीद परस्त अपने आप को दीन के ताबे बनाते हैं। तो देखिए नाम जब हम दीन का लें तो फिर हमें काम भी दीन के मुताबिक करना चाहिए। अल्लाह की नेम दी हुई खुशियों के जो मौके हैं क्या कभी कभी हमारे नाफरमानी के जरिए नहीं बन गए? और आज तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि दीन का इंतहाल क्या कर दिया लोगों ने, कि खुशी के मौके पे अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? अब मेरा एक ही तो बेटा है, अब मैं उस पर भी ना नाराज़ करूँ, हम कहते नहीं लेकिन हमारा अमल ये बात बता रहा होता है। फिर उसके बाद 71-72 में जमाती ज़िंदगी की बरकत, मिलकर रहने से इस्लाम अकेले रहने की बजाय जुड़ के टीम वर्क सिखाता है, तो आप कह सकते हैं कि टीम वर्क की बरकतें आपको मुझे आयत 71 से 72 में है। नतीजा क्या निकलता है कि हम बहुत सारे ऐसे शैतानों से बच जाते हैं जो हमें गुमराह करते हैं। आज भी अगर आपकी कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बहू, कोई कोई भी, आप खुद भी, ऑफ कोर्स हम सभी अपने ऊपर इसको लेते हैं, कभी आपको महसूस होता है ना कि आप बहक रहे हैं, आपका गुनाहों में दिल लग रहा है, बेटा है तो अब ये बाहर भाग रहा है, फिल्में देख रहा है, तो आप उसको फौरन किसी अच्छी कंपनी में लेके चलिए। अच्छी सोहबत हमें बताती है इसके बरक्स कुछ शैतान है, यानी यह जो है ना, पढ़ते ही ऐसे लगता है जिन चिपक रहे हैं, किसी को असेब हो रहा है, तो क्या कहा कि मिल के रहो, तनहा ना छोड़ें। ऐसे बंदे को आप कभी ताना ना दें, इल्ज़ाम ना दें, वो और बिफरेगा, उसको और गुस्सा आएगा, वो अपने साथ ही बेचारा इतना झगड़ रहा है, आप कुछ कहेंगे तो उसको और गुस्सा आएगा। और आयत 73 में कायनात की तख्लीक का मफहूम और नतीजा, यानी अल्लाह ने आपको मुझे हक के लिए पैदा किया है, तो आप मैं सिर्फ इस दुनिया के दुखों में ना चले जाएं। फिर इसके बाद आगे फिर आप नोट करिए कि पारे का जहां तक एंड शुरू होता है ना, वहां किसका जिक्र होता है अमूमन? आप इस दफ़ा ये नोट कर रहे हैं चीज़, अक्सर पारों की तकमील के करीब हज़रत इब्राहिम का किस्सा आ जाता है, क्योंकि असल में वो एक कह लीजिए कि सिंबल है हर दौर के लिए, कि जिन्होंने शिर्क जैसे शिर्क वाले माहौल में भी अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं किया था। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद परस्ती का बयान है इधर, मुशरिक माहौल में पैदा हुए थे, इनका बाप बुत परस्त भी था, बुत बनाता भी था, और बड़ी अमीर कबीर कौम थी, यानी आज के दौर में आप कह लें कि बादशाह और वजीरों के घर में रहते थे, यानी हज़रत इब्राहिम का बाप उस दौर के बादशाह का बहुत करीबी शख्स था। तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को इतने अंधेरों में तौहीद पे जमा दिया। तो आज आप मैं कहते हैं अमेरिका रह रहे हैं जी, कनाडा रह रहे हैं, चाइना है जी, फुलाएं हैं जापान में, अब हम यहाँ अपने बच्चों को इस्लाम पे कैसे रखें? तो ये फितरत की पुकार है, और ये पूरा मुशाहिदा है, आप इसको जब पढ़ते हैं, सूरज को देखा, चाँद को देखा, और इस तरह की चीज़ें दिखा के अल्लाह ने उनके दिल को तौहीद पे जोड़ दिया। फिर इतमाम हुज्जत है मुशरिकीन पर हज़रत इब्राहिम के इस अमल से, आयत 76 से 79 में, कि फलम मजन अलैहि लैल, आप सबको ये किस्सा आता होगा, रात देखी, फिर उसमें एक सितारा था, फिर कहने लगे अच्छा ये रब होगा, लेकिन जब वो छुप गया तो कहा इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, फिर जब उन्होंने चांद को देखा कहा ये रब होगा, लेकिन फिर सूरज को देखा, जब सारा कुछ देखा तो एंड पे क्या कहा इन्नी वजहत वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द द हनीफा, यानी मैं इन सब के निज़ाम को चलाने वाले मान, क्या पता चला, यानी दीन इब्राहिमी जो है वो दलील पे, हमारा दीन दलील को मानता है, किसी के चेहरे से ही उसकी असल शिनाख्त हो जाती है। और इबादत और तौहीद से मकसूद क्या है कि एक इंसान अल्लाह को एक मान ले। फिर उसके बाद आयत नंबर 80 से 82 में आपको मुझे एक मैसेज मिलता है, और वो क्या है, बहुत ही बड़ा मैसेज है, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि जो ही हज़रत इब्राहिम ने शिर्क के उस माहौल में अल्लाह की बात की, कौम आ गई। आयत देख लीजिए 80 से 82 का पूरा किस्सा है, वह हाजहू कौम, उसकी बिरादरी, उसकी कौम उससे लड़ती भी आ गई, तो इब्राहिम उनको तबलीग कर रहे हैं कि देखो तुम मुझे अल्लाह के मामले में पीछे नहीं डाल सकते। और फिर आगे आयत नंबर 83 में, अम्बिया कराम ज़हूर नबूवत से पहले भी गुनाहों से महफूज रहते थे, अल्लाह ताला उनकी इस्मत की हिफाजत करते थे, उनकी अक़ल की हिफाजत करते थे, ये अल्लाह ने इसमें बता दिया। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम, यानी अल्लाह अपनी कौम से बात करने का तरीका भी सिखा देते हैं। फिर दोबारा आप देखिए मुस्तकिल, ये भी बात पीछे वाले पारों से आप देख रहे हैं कि पारे कैंड पे अम्बिया कराम का गुलदस्ता पेश किया जाता है। आयत 84 से 87 में, कितने नबी हैं, इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून, जकरिया, याहिया, ईसा, इलियास, इस्माइल, अलयसा, यूनुस, लूत, वकुल्लम फद्दलना अलल आलमीन, कौन है, अलैहिमुस्सलाम, 18 नबियों के नाम है, और उनकी औलादों और उनके भाइयों की बात करके एंड पे क्या कहा है, अगर इस आयत 88 को याद कर लीजिए, शिर्क तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है, यानी ये नबी अपनी सारी खूबियों और सारी खिदमात के बावजूद वलौ अशरकू ला हबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये भी शिर्क करते तो इनके अमल ज़ाया होते। तो शिर्क वो जरासीम है, वायरस है, जो बाकी सारी नेकियों को भी ख़त्म करता है। अल्लाह आपको और हमारी नस्लों को शिर्क से बचा दे। پھر آیت 89 میں اہل یثرب کے لیے کچھ بشارتیں ہیں، یعنی مکہ والے نبی کی قدر نہیں کر رہے، بے فکر ہو جاؤ، میں ان سے نبی کو نکال کے تمہارے پاس لانے والا ہوں. آیت 90 میں پیروی اس کی کرو جو ہدایت پر ہے، یعنی بے ہدایتوں کے پیچھے نہ لگو بلکہ ہدایت والوں کے پیچھے لگو. آیت 91 میں یہود کا ایک جھوٹ کھول کر سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ کس طریقے سے اللہ کی چونکہ قدر نہیں کرتے اور اپنے اپنے دور کے نبیوں کے یہ دشمن ہو گئے تھے اور کتابوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں. پھر قرآن پاک کی 5 شانیں آپ کو 92 آیت میں مل رہی ہیں. اگر آپ قرآن سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس آیت پہ غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی بہت ساری شانیں ہیں. یہ مبارک بھی ہے، یہ تصدیق بھی کرتا ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو بہت ساروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اور آیت 93 میں جھوٹی نبوت کے دعوے دار اور جھوٹ پہ زندگیاں گزارنے والے کی موت کا وقت ہے. بڑی ہی تکلیف دہ کیفیت ہے اس آیت کو اگر آپ پڑھیں کہ جب ولو ترائز الظالمون فی غمرات الموت. اس میں ہمارا ایک لیکچر بہت ہی زیادہ لوگوں کو اس نے فائدہ دیا تھا، جس میں پورا قصہ تھا اور میں مر گیا، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا حسرتیں ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو آپ اس کو بھی یوٹیوب سے یا nurulquran.com سے فائنڈ آؤٹ کر لیجئے. اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ آیت 94 میں روز قیامت تمام انسانوں کا دوسرا جو اجتماع ہوگا اس کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، تم آگئے ہمارے پاس اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، کیا پتہ چلا کہ دنیا میں آئے بھی اکیلے اور جائیں گے بھی اکیلے اور وہاں کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. اور آیت 95 سے بلکہ پارے کے اینڈ تک، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو 99 تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کیسے گٹھلیوں کو پھاڑتا ہوں، بیج سے درخت نکالتا ہوں، سورج چاند سارے. یعنی یہ آیت بھی خاص طور پہ ان آیات میں سے ہے، یہ پورا ٹکڑا، کہ جس میں ساری آیات کائنات کی نشانیاں اکٹھی ہو گئیں، لیکن مشرک جو ہوتا ہے اس کی شاید نظر کمزور ہوتی ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں ہے. اس لیے پھر آیت 100 سے 103 تک توحید کا بیان اور شرک کی نفی ہے، یعنی اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ اس سے زیادہ دوسروں سے جڑتے ہیں. اور پھر آخر میں اتمام حجت ہے، آیت 104 سے 105 تک، کہ اللہ نے تو حق واضح کر دیا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، دلیل آ گئی، قرآن پڑھ لیا، پارا پورا ہو گیا، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جس نے اب اس کے آنکھیں کھول لی اس کا فائدہ اس کو ہوگا، وَمَنْ عَمِيَ، پھر بھی کو اندھا رہے، یعنی پھر بھی وہ شرک کرے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرے، فَعَلَيْهَا، تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا. تو کیا پتہ چلا، چند اہم ہدایات مل گئیں آیت 106 سے 108 میں، کہ اس وحی میں جو نبی کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچی اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ، یعنی تبلیغ کے دوران بدتمیزی نہ ہو کرو، گستاخ نہ ہو، ان کو برا کہو گے وہ غلطی سے تمہارے رب کو بھی کہہ دیں گے. لہٰذا اہل ایمان کی تسلی کے لیے آیت 109 میں کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، واقسموا باللہ جحد ایمانہم، کہتے تو یہ لوگ یہی ہیں کہ جب بھی کبھی ہمارے پاس کوئی نشانی آئے گی ہم اس کو مان لیں گے، لیکن جب آتی ہے تو یہ مانتے نہیں، کیونکہ حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے کب، جب بندہ اس کو بار بار نہ کرے. آخری آیت پہ میں آپ کو موقع دوں گی، چند سیکنڈ غور کیجیے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دل کو اور ان کی آنکھوں کو، کیوں، کما لم یومنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی دفعہ اس پہ، وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے. آپ ابھی اس کو دیکھیں اور پھر جب اگلا پارا شروع ہوگا نا تو دونوں کا ربط ہے. آپ کو قرآن میں ایک سیکوینس تو دکھ رہا ہے نا، ہم اس انداز میں جو پڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ قرآن میں ایک ہارمنی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، حالانکہ یہ ہمارے علم کی کمی ہے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جب مستقل آپ اللہ کی بات کو پیچھے کریں، اللہ کی دعوت کو اگنور کریں، تو اللہ توفیق چھین لیتا ہے. آپ کو کوئی ایک بار بلائے گا، آپ نہیں جائیں وہ دوبارہ بھی بلا لے گا، तीसरी दफ़ा के बाद वो कहेगा छोड़ दो, पता नहीं ये जिद छी ना हो जाए, ये ऑफेंड हो रही हैं। इफ़ यू विल नॉट यूज़ इट यू विल लूज़ इट। तो आपके मेरे लिए इसमें यही पैगाम है कि आज हमने अपने से ये नियत करनी है कि अल्लाह की इस किताब की जो बात सुनने का हमें मौका मिले लब्बैक कहना है, जिस नेकी का मौका मिले लब्बैक। हमारी औकात क्या है, हम ना क्यों करते हैं, अल्लाह छीन लेगा। आप देखिए जो मशीन यूज़ नहीं होती आखिर ख़राब हो जाती, आप गाड़ी 6 महीने खड़ी कर दें पोर्च में तो उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो जितनी भी कोशिश करेंगे उतना अल्लाह ताला आपका रास्ता आसान करेगा। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।